अयि मित्रगणाः, अभिवादनं व्याहरामि, स्वागतं च करोमि। आगच्छन्तु रेडियो मधुबनस्य श्रव्यमञ्चे। अहं लीना मेहेन्दळे उपस्थिता अस्मि। अद्य अपि वयं वैदिकगणितं पठिष्यामः। अयि मित्रगणाः, गतरविवासरे अहं निवेदनम् अकुर्वं यत् ऊर्ध्वतीर्यक्सूत्रम् इति एकम् अतीव उपयुक्तं सूत्रं वर्तते। द्वाभ्यां संख्याभ्यां गुणनफलप्राप्त्यर्थम् इदं सूत्रं प्रचलितम्। आगच्छन्तु पठिष्यामः वयम्। अर्थात् हे मित्रगण, सबका अभिवादन है, स्वागत है रेडियो मधुबन के श्रव्य मंच पर। मैं लीना मेहेंदळे उपस्थित हूँ और आज भी हम वैदिक गणित को ही पढ़ेंगे। जब दो संख्याओं का आपस में गुणनफल अर्थात गुणाकार निकालना हो, तब ऊर्ध्वतीर्यक सूत्रम, यह सूत्र अति उपयोगी है। तो मित्रों, ये कुछ मैं प्रयास कर रही हूँ जो अपनी पुरातन संस्कृति है, जो वेदों से आरंभ होती है, बल्कि वेदों से भी पहले से आरंभ होती है, लेकिन वेद काल में ही हमने गणित में कितनी प्रगति की थी, इसकी एक झलक हमें इन वैदिक सूत्रों से मिलती है। मित्रों, गत रविवार को भी हमने पढ़ा था कि ऊर्ध्वतीर्यक सूत्र से दो संख्याओं का गुणनफल निकालना बहुत सरल है, और हमने तीन तीन अंकों वाली दो संख्याएं लेकर के इस विधि को थोड़ा बहुत सीख भी लिया था। लेकिन आज हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास और भी अधिक अंकों वाली संख्या हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। मित्रों, तुम्हें यह पता है गणित का बहुत छोटा सा नियम, सरल सा नियम, कि अगर हमारे पास तीन तीन अंकों वाली दो सबसे छोटी संख्याएं हों, अर्थात 100 गुणा 100, तो उसका उत्तर होता है 10,000, जो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या है। और जब हमारे पास 4 अंकों वाली सबसे छोटी दो संख्याएं होती हैं, अर्थात 1,000 गुणा 1,000, तो उसका उत्तर जो निकलता है वह 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है। इसका अर्थ हुआ कि यदि हमारे पास 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल करना है, तो यह गुणनफल या तो 5 अंकों वाला होगा या 6 अंकों वाला। इससे अधिक 7 अंकों वाला उत्तर हमें नहीं मिल सकता है, जब तक हमारे पास कम से कम एक संख्या 4 अंकों वाली ना हो जाए। तो एक तो हम इस सूत्र को याद रखेंगे। अब अगर समझो हमें एक 5 अंकों वाली संख्या को दूसरे 5 अंकों वाली संख्या से गुणा करना है, तो हमारा उत्तर या तो 9 अंकों वाला होगा या 10 अंकों वाला होगा। इससे बाहर हमारा उत्तर नहीं जा सकता है। इस युक्ति को भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब ऊर्ध्वतीर्यक पद्धति से हम 3 अंकों से भी बड़ी संख्याएं हों, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 6-6 अंकों वाली, तो भी हम गुणनफल को कर सकते हैं। अब समझो कि हमने केवल 5-5 ही अंकों वाली दोनों संख्याएं ली। सूत्र वही सरल सा है कि निचली संख्या के एकम स्थान के अंक को तब तक मत छोड़ो जब तक ऊपरी संख्या का बाई तरफ वाला अंतिम आंकड़ा ना पहुंच जाए। तब तक तिर्यक गुणाकार करते रहो। अर्थात पहले हम निचले एकम का ऊपरी एकम से गुणाकार करेंगे तो हमें उत्तर का एकम स्थान का अंक मिलेगा। जब हम निचले एकम का ऊपरी दशम के साथ और ऊपरी एकम का निचली दशम के साथ गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे तो हमें उत्तर का दशम का आंकड़ा मिलेगा। उत्तर का शतम का आंकड़ा ढूंढने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमें निचले एकम का ऊपरी शतम के साथ, ऊपरी एकम का निचले शतम के साथ और दोनों ही संख्याओं के दशम स्थान का आपस में ऊर्ध्व गुणाकार, इस प्रकार 3 गुणाकार करके उनका जोड़ हमें करना होगा, तब जाकर के हमें शतम स्थान का अंक प्राप्त होगा। उत्तर का सहस्र के स्थान का आंकड़ा ढूंढने के लिए चार अंकों पर जाते हैं तो क्या करेंगे कि पहले निचले एकम का ऊपरी सहस्र के स्थान पर जो अंक विराजमान है उससे तिर्यक गुणा करेंगे और इसी प्रकार ऊपरी एकम का निचले सहस्र स्थान वाले अंक से गुणाकार करेंगे, फिर निचले दशम स्थान के अंक के साथ ऊपरी शतम का तिर्यक गुणाकार और ऊपरी दशम के साथ निचले शतम का तिर्यक गुणाकार ये भी करेंगे। इस प्रकार हमें चार गुणनफल मिलेंगे। उन चारों का जब हम जोड़ करेंगे तो हमें उत्तर के सहस्र वाले स्थान का अंक मिलेगा। इसके बाद हमें बाई तरफ वाला पांचवा अंक शोधना है उत्तर का। अगर हमारे पास पांच अंकों वाली संख्या है तो हम फिर निचले एकम का ऊपरी दशसहस्र वाले स्थान के अंक के साथ गुणा और ऊपरी एकम का निचले दशसहस्र वाले अंक के साथ गुणाकार करेंगे, फिर बीच में जो अंक रह गए उनके लिए निचले दशम का ऊपरी सहस्र के साथ और ऊपरी दशम का निचले सहस्र के साथ, साथ ही दोनों संख्याओं का शतम स्थान का आंकड़ा अभी भी बचा रह गया उसका आपस में ऊर्ध्व गुणाकार। इस प्रकार चार तिर्यक गुणाकार और एक ऊर्ध्व गुणाकार, ये पांच गुणाकारों का योग जोड़ मिला करके हमारे उत्तर का पांचवा अंक बनता है। अब समझो कि हमने केवल पांच पांच ही अंकों वाली दोनों संख्याएं ली थी, तो अब हमारे एकम स्थान के अंक का बाकी सभी अंकों के साथ गुणनफल हो गया है। तो अब हमारे उत्तर के छठे स्थान पर पहुंचने के लिए हम एकम वाली ऊपरी और एकम वाली निचली दोनों को छोड़ देंगे। अब निचले दशम के साथ ऊपरी संख्या के दशसहस्र स्थान वाले अंक के साथ तिर्यक गुणाकार और ऊपरी दशम का निचले दशसहस्र स्थान वाले अंक के साथ तिर्यक गुणाकार, साथ ही निचली संख्या के शतम स्थान की संख्या का ऊपरी सहस्र के साथ और ऊपरी शतम का निचली सहस्र के साथ, इस प्रकार चार तिर्यक गुणाकारों का योग जो मिलेगा वह हमारे उत्तर के दाहिनी तरफ से छठे स्थान के संख्या के लिए वह उत्तर हमारे काम आएगा। अब हमने दशम स्थान के भी दोनों अंकों को पार लगा दिया, अब बचते हैं शतम सहस्रक और दशसहस्रक स्थान के आंकड़े। तो फिर निचले शतम का ऊपरी दशसहस्रक के साथ और ऊपरी शतम का निचले दशसहस्रक के साथ तिर्यक गुणाकार, और इन दो तिर्यक गुणाकारों में हम जोड़ेंगे जो ऊपरी और निचली संख्या के सहस्रक स्थान पर जो अभी दो आंकड़े बचे हुए हैं उनका आपस में ऊर्ध्व गुणाकार। तो इस प्रकार हमें उत्तर के दहने से सातवें स्थान का अंक प्राप्त हुआ। इसके बाद अब बचते हैं सहस्रक और दशसहस्रक स्थान वाले दोनों अंक, तो उनका तिर्यक गुणाकार होगा अर्थात निचले सहस्रक के साथ ऊपरी दशसहस्रक स्थान वाली संख्या और ऊपरी सहस्रक स्थान के साथ निचले दशसहस्रक वाली संख्या का तिर्यक गुणाकार। यह जब हम करेंगे तो हमें बाई तरफ से आठवें स्थान का अंक मिलेगा, और फिर ऊपरी और निचली संख्या के जो दोनों दशसहस्रक स्थान पर जो दोनों अंक हैं उनका आपसी गुणाकार करेंगे तो हमें अपने उत्तर का नौवां या नौवां और दसवां अंक मिलेंगे। इससे आगे हमें नहीं जाना है। तो मित्रों, यह विधि सुनने में थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कागज पेंसिल लेकर बैठ गए और इसे रुक रुक करके ध्यान से सुन करके इसके आधार पर तुमने गणित किए तो तुम्हें समझ में आएगा कि यह कोई बहुत कठिन विधि नहीं है। मित्रों, शकुंतला देवी का एक कार्यक्रम मेरे कॉलेज में एक बार हुआ था, जब मैंने उन्हें प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने बोर्ड पर लिखी हुई दो बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनफल करते हुए देखा है। और वे हाथ में चौक उठाती थीं और दाहिनी तरफ से एक 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 करके अंक लिखती चली जाती थीं और बाईं तरफ का अंतिम अंक लिख करके ही वे रुकती थीं और फिर हम लोग बड़ा लंबा चौड़ा गुणाकार करके अपना उत्तर ढूंढ निकालते थे और उनके उत्तर के साथ मिला करके देखते थे। उस जमाने में कैलकुलेटर भी थे जो कि हमारे शिक्षकों के पास हुआ करते थे और शिक्षकगण कैलकुलेटर पर फटाक से उत्तर निकालते थे और उनके उत्तर के साथ मिला करके देखते थे और हम सभी आश्चर्य में पड़ जाते कि उनका उत्तर कभी भी गलत नहीं होता था। तो ये जादू है साधना की। बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनफल हम तब तक नहीं निकाल सकेंगे जब तक हम इस विधि को 200 बार 500 बार साध ना लें। तो देखें, आज की इस कड़ी को सुनने के बाद कितने लोगों में हिम्मत और उत्साह भर जाता है कि हम भी कुछ इस प्रकार के जादू समान लगने वाले वैदिक गणित को करके देखें। तो मैं आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करती हूँ। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।